नमस्ते, मैं आराव हूँ। 9R Tree के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। वॉन वर्नन की इम्प्लीमेंटिंग डोमेन ड्रिवन डिजाइन को वास्तविक एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर में लागू करने पर केंद्रित तकनीकी पुस्तक है। यह एरिक इवांस के मूल विचारों का विकल्प नहीं, बल्कि उन्हें अधिक क्रियाशील ढंग से समझाने वाली विस्तृत मार्गदर्शिका है। पुस्तक का लक्ष्य केवल कोड के पैटर्न गिनाना नहीं है, बल्कि व्यवसाय की भाषा, प्राथमिकताओं और नियमों को सॉफ्टवेयर मॉडल में सही स्थान दिलाना है। वर्णन रणनीतिक डिजाइन और टैक्टिकल डिजाइन के बीच स्पष्ट संबंध बनाते हैं। रणनीतिक स्तर पर डोमेन, सब डोमेन, बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट मैपिंग आते हैं। टैक्टिकल स्तर पर एंटिटी, वैल्यू ऑब्जेक्ट, एग्रीगेट, रिपोजिटरी, डोमेन इवेंट और सर्विस जैसे निर्माण खंड आते हैं। एक बहु किरायेदार सास उत्पाद के सतत के इस अध्ययन के माध्यम से पुस्तक दिखाती है कि टीम शुरुआती गलतियों, बदलती समझ और एकीकरण की समस्याओं से कैसे निपट सकती है। जावा आधारित उदाहरण प्रमुख हैं, लेकिन वास्तुशिल्प सिद्धांत किसी एक भाषा तक सीमित नहीं है। इसकी प्रकृति संदर्भ पुस्तक और व्यावहारिक कार्य पुस्तिका दोनों की है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, डोमेन और सबडोमेन के आधार पर निवेश की सही दिशा। पुस्तक का आरंभिक और निर्णायक तर्क यह है कि हर सॉफ्टवेयर समस्या समान व्यावसायिक मूल्य नहीं रखती। किसी संगठन का कोर डोमेन वह क्षेत्र है जिसमें उसकी विशिष्ट प्रतिस्पर्धी क्षमता, निर्णय और नियम निहित होते हैं। इसके विपरीत, सपोर्टिंग सबडोमेन आवश्यक तो होते हैं, पर वे संगठन को अलग पहचान नहीं दिलाते। जेनेरिक सबडोमेन ऐसी आम समस्याएं हैं जिनके लिए तैयार उत्पाद, बाहरी सेवा या मानक समाधान अधिक उपयुक्त हो सकता है। यह भेद केवल वर्गीकरण नहीं है। इससे टीम तय करती है कि विशेषज्ञों का समय, मॉडलिंग की गहराई और कस्टम निर्माण का खर्च किस जगह लगाया जाए। वर्णन का दृष्टिकोण उस सामान्य फूल को चुनौती देता है जिसमें सभी मॉड्यूलों को एक जैसे तकनीकी उत्साह से बनाया जाता है। यदि साधारण पहचान प्रबंधन पर अत्यधिक कस्टम डिजाइन लगाया जाए लेकिन मुख्य व्यावसायिक प्रक्रिया सही रहे, तो संसाधन गलत दिशा में जाते हैं। पुस्तक यह भी स्पष्ट करती है कि डोमेन की सीमाएं केवल संगठन के विभागों या डेटाबेस तालिकाओं से नहीं निकलती, वे व्यवसाय की क्षमता, विशेषज्ञता और बदलते नियमों से निर्धारित होती है। इसलिए डोमेन विश्लेषण को डेवलपरों और डोमेन विशेषज्ञों की संयुक्त बातचीत बनना चाहिए। यह प्राथमिकता आधारित सोच DDD को भारी डिजाइन अभ्यास बनने से बचाती है और उसे व्यावसायिक निर्णयों से जोड़ती है। दूसरा, बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट और सर्वव्यापी भाषा से मॉडल की सीमाएं तय करना। इम्प्लीमेंटिंग डोमेन ड्रिवन डिजाइन में बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट उस सीमा का नाम है जिसके भीतर किसी मॉडल और उसकी भाषा का अर्थ सुसंगत रहता है। एक ही शब्द अलग व्यावसायिक हिस्सों में अलग अर्थ रख सकता है। उदाहरण के लिए, किसी उत्पाद, सदस्यता या ग्राहक की परिभाषा बिक्री, पहचान और सहयोग जैसी क्षमताओं में समान नहीं होगी। पुस्तक का आग्रह है कि इन्हें एक सर्वव्यापी विशाल मॉडल में जबरन मिलाने के बजाय अलग कॉन्टेक्स्टों में स्पष्ट रखा जाए। हर कॉन्टेक्स्ट के भीतर सर्वव्यापी भाषा डोमेन विशेषज्ञों और तकनीकी टीम के बीच साझा कार्यभाषा बनती है। यह भाषा केवल बैठकों के लिए नहीं है, इसे कोड के नामों, API, परीक्षणों और दस्तावेजों में दिखाई देना चाहिए। इससे अनुवाद की परतें घटती हैं और गलत धारणाएं जल्दी पकड़ी जाती हैं। पुस्तक कॉन्टेक्स्ट मैप के माध्यम से यह भी देखती है कि अलग मॉडलों के बीच संबंध कैसे प्रबंधित किए जाए। साझेदारी, ग्राहक आपूर्तिकर्ता संबंध, अनुरूपता, एंटी करप्शन लेयर और अलग रास्ता जैसे विकल्पों का अर्थ यही है कि एकीकरण शक्ति संबंधों और मॉडल के प्रदूषण से अलग नहीं है। इस दृष्टि में सीमा बनाना अलगाव पैदा करना नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और अर्थ को स्पष्ट करना है। विशेषकर बड़े या विरासत प्रणालियों वाले संगठनों में यही स्पष्टता अनियंत्रित निर्भरता कम कर सकती है। तीसरा, एग्रीगेट एंटिटी और वैल्यू ऑब्जेक्ट के जरिए व्यावसायिक नियमों की रक्षा। पुस्तक के टैक्टिकल हिस्से का केंद्र यह प्रश्न है कि व्यावसायिक नियमों को कोड में ऐसी जगह कैसे रखा जाए जहां वे अनजाने में टूट न सके। एंटिटी की पहचान समय के साथ बनी रहती है, जबकि वैल्यू ऑब्जेक्ट का महत्व उसके गुणों के संयोजन में होता है। वर्णन इन भेदों को केवल परिभाषा के रूप में नहीं रखते, बल्कि मॉडल को सरल और स्पष्ट बनाने के उपकरण मानते हैं। एग्रीगेट विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यह संबंधित डोमेन ऑब्जेक्टों की वह सीमा है जिसके भीतर संगति नियम लागू किए जाते हैं, और इसका एग्रीगेट रूट बाहरी परिवर्तन का नियंत्रित प्रवेश बिंदु होता है। पुस्तक छोटे एग्रीगेटों और सावधानी से चुनी गई ट्रांजैक्शन सीमाओं पर बल देती है। बहुत बड़ा एग्रीगेट सुविधा के लिए सब कुछ एक साथ रखने जैसा लग सकता है, लेकिन वह लॉकिंग, प्रदर्शन और समवर्ती बदलावों की समस्या बढ़ा सकता है। दूसरी ओर, अलग एग्रीगेटों के बीच तत्काल पूर्ण संगति की अपेक्षा अक्सर अवास्तविक होती है। वहां डोमेन इवेंट और अंततः संगति उपयोगी हो सकते हैं। फैक्ट्री जटिल वैध निर्माण को केंद्रित करती है और रिपोजिटरी मॉडल को संग्रहण तकनीक से अलग रखती है। इस प्रकार इन पैटर्नों का लक्ष्य परतें बढ़ाना नहीं है, लक्ष्य यह है कि महत्वपूर्ण नियम किसी यूआई डेटाबेस क्वेरी या बिखरी हुई सर्विस में खोने के बजाय डोमेन मॉडल में साफ और परीक्षण योग्य रहे। चौथा, डोमेन इवेंट और कमांड क्वेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बदलती प्रणालियों का समन्वय। वर्णन डोमेन इवेंट को उस महत्वपूर्ण तथ्य की अभिव्यक्ति के रूप में रखते हैं जो डोमेन में घट चुका है और अन्य हिस्सों के लिए अर्थपूर्ण है। यह दृष्टिकोण केवल संदेश भेजने की तकनीक नहीं है। जब कोई घटना स्पष्ट नाम के साथ दर्ज होती है तो टीम को यह तय करना पड़ता है कि वास्तव में कौन सा व्यावसायिक परिवर्तन हुआ, उसका स्वामी कौन है और किन प्रतिक्रियाओं को उससे जुड़ना चाहिए। इससे अलग बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट अपेक्षाकृत ढीले ढंग से समन्वित हो सकते हैं। पुस्तक इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर। इवेंट सोर्सिंग और कमांड क्वेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेग्रीगेशन जैसी आधुनिक शैलियों को DDD के साथ रखती है, लेकिन उन्हें अनिवार्य नुस्खा नहीं बताती। कमांड उस इरादे को व्यक्त करती है जो स्थिति बदलना चाहता है, जबकि क्वेरी जानकारी पढ़ने के लिए होती है। इन जिम्मेदारियों को अलग करने से जटिल पढ़ने की जरूरतों और सख्त डोमेन नियमों को स्वतंत्र रूप से विकसित करना संभव हो सकता है। इवेंट सोर्सिंग में वर्तमान स्थिति को सीधे संग्रहित करने के बजाय घटनाओं के क्रम से पुनर्निर्मित किया जाता है, इसलिए यह इतिहास और ऑडिट की जरूरत वाले डोमेन में उपयोगी हो सकता है। फिर भी पुस्तक के व्यापक पाठ के अनुसार तकनीकी शैली को डोमेन की जरूरत, टीम की क्षमता और संचालन संबंधी लागत के आधार पर चुनना चाहिए। हर समस्या के लिए इवेंट सोर्सिंग या अलग रीड मॉडल अपनाना अनावश्यक जटिलता भी पैदा कर सकता है। अंत में हेक्सागोनल आर्किटेक्चर और केस अध्ययन से कार्यान्वयन की व्यावहारिक सीख, इस पुस्तक को अलग बनाने वाला पक्ष इसकी कार्यान्वयन उन्मुख संरचना है। वर्णन सिद्धांतों को अलग अलग शब्दकोश की तरह प्रस्तुत नहीं करते, बल्कि एक स्क्रम आधारित बहु किरायेदार सास प्रणाली बनाने वाली टीम के संदर्भ में जोड़ते हैं। टीम की गलतियां और सुधार यह दिखाते हैं कि मॉडल पहली बैठक में पूर्ण नहीं बनता। नई भाषा, नए नियम और एकीकरण की बाधाएं मिलने पर सीमाओं तथा जिम्मेदारियों को संशोधित करना पड़ सकता है। हेक्सागोनल आर्किटेक्चर का उपयोग भी इसी उद्देश्य से समझ आता है। डोमेन को वेब फ्रेमवर्क, डेटाबेस, मैसेजिंग या बाहरी प्रदाताओं के सीधे नियंत्रण से बचाया जाता है। एप्लीकेशन पोर्टों के माध्यम से अपनी जरूरत व्यक्त करता है और एडेप्टर बाहरी तकनीकों को उन पोर्टों से जोड़ते हैं। इससे परीक्षण आसान हो सकते हैं और तकनीकी विकल्प बदलने पर डोमेन नियमों पर कम असर पड़ता है। पुस्तक के जावा और कुछ स्प्रिंग आधारित उदाहरण इस संरचना को ठोस बनाते हैं, हालांकि पाठक को इन्हें किसी कठोर फ्रेमवर्क के निर्देश नहीं मानना चाहिए। वास्तविक सीख यह है कि आर्किटेक्चर व्यवसाय मॉडल की सेवा करे। यदि किसी परत, इंटरफेस या संदेश का स्पष्ट डोमेन उद्देश्य नहीं है तो वह केवल औपचारिकता बन सकता है। केस अध्ययन संतुलन को दिखाता है, जहां तकनीकी स्वच्छता और उत्पाद की वास्तविक जरूरत दोनों को साथ रखना पड़ता है। निष्कर्ष में, इंप्लीमेंटिंग डोमेन ड्रिवन डिजाइन उन सॉफ्टवेयर आर्किटेक्टों, डेवलपरों, विश्लेषकों और तकनीकी नेतृत्वकर्ताओं के लिए सबसे उपयोगी है जो DDD के शब्दों से आगे बढ़कर उसके निर्णयों को परियोजना में उतारना चाहते हैं। यह नए पाठकों के लिए भी उपयुक्त है क्योंकि मुख्य अवधारणाएं समझाई गई हैं, लेकिन इसकी विस्तृत प्रकृति के कारण इसे धीरे धीरे पढ़ना और वास्तविक काम के दौरान संदर्भ की तरह लौटकर देखना अधिक फलदायी होगा। जावा उदाहरणों से अपरिचित पाठक भी रणनीतिक और वास्तुशिल्प सिद्धांतों का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि उदाहरणों की तकनीकी शैली को समझने में अतिरिक्त प्रयास लग सकता है, पुस्तक का व्यावहारिक लाभ यह है कि यह टीम को सही प्रश्न पूछना सिखाती है। कौन सा डोमेन वास्तव में महत्वपूर्ण है? किसी शब्द का अर्थ किस सीमा में मान्य है? कौन सा नियम किस एग्रीगेट में सुरक्षित रहेगा और किन कॉन्टेक्स्टों को किस तरह एकीकृत होना चाहिए? यह DDD को केवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैटर्नों के संग्रह तक सीमित नहीं करती। एरिक इवांस की मूल पुस्तक की तुलना में इसका बल कार्यान्वयन, समकालीन आर्किटेक्चर और विस्तृत उदाहरणों पर अधिक है। संक्षिप्त DDD परिचयों की तुलना में यह कहीं गहरी है, क्योंकि इसमें रणनीतिक चयन, टैक्टिकल मॉडलिंग और एकीकरण के बीच संबंध स्पष्ट किया गया है। इसकी सीमा भी यही है कि यह त्वरित परिचय नहीं है और हर सुझाव को हर परियोजना में लागू नहीं किया जा सकता। फिर भी जटिल व्यवसाय नियमों वाली प्रणाली के लिए यह एक ठोस, विचारशील और लंबे समय तक उपयोगी मार्गदर्शिका है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं वॉन वर्नन, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।